यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 4 दिसंबर 2020 के बुलेटिन की सुर्खियां। यूएन महासचिव ने कहा, इंसानी गतिविधियों से पृथ्वी का बदल रहा है मिजाज, ग्रह से अब सुलह करने का सही वक्त। WHO ने कहा, नेताओं और आम लोगों के निर्णय तय करेंगे महामारी का रुख, वैक्सीनों को मंजूरी मिलना शुरू। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सम्मान देने के साथ समाजों में उनके और ज्यादा समावेश की पुकार। मलेरिया पर काबू पाने के प्रयास हुए धीमे, बड़ी आबादी पर इसकी चपेट में आने का जोखिम। और यमन में अंधाधुंध हो रहा है मानवाधिकारों का उल्लंघन, सभी पक्ष हैं जिम्मेदार। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आइए। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने जलवायु आपदा के खिलाफ लड़ाई को 21वीं सदी की सर्वोच्च प्राथमिकता करार दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दिए गए अपने एक उत्साहपूर्ण और बेबाक भाषण में ये बात कही। इस भाषण के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में जलवायु कार्रवाई माह शुरू हुआ है, जिसमें 12 दिसंबर को जलवायु सम्मेलन आयोजित होगा, जो कि वर्ष 2015 में हुए पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ का मौका है। यूएन प्रमुख ने पर्यावरण के साथ मानवता द्वारा छेड़छाड़ के नतीजों का जिक्र करते हुए ऐसी घटनाओं की तरफ ध्यान खींचा, जिनके जरिए प्रकृति बढ़ती शक्ति और क्रोध के साथ अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। ये प्रतिक्रिया बायोडायवर्सिटी के पतन, रेगिस्तान के विस्तार और समुद्रों में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ते तापमान के रूप में सामने आ रही है। कोविड-19 के कारण धीमी हुई आर्थिक गतिविधियों ने वैसे तो हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के कार्बन उत्सर्जन को अस्थायी तौर पर कुछ धीमा कर दिया है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन गैसों का स्तर अब भी बढ़ रहा है। इस चिंताजनक चलन के बावजूद ग्रीन हाउस गैसों के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन उत्पादन भी काफी बढ़ने की संभावना है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा,
I have detailed an emergency, but I also see hope. I see a history of advances that show what can be done. Many cities are becoming greener.
यूएन महासचिव कह रहे थे कि मैंने एक आपदा का ब्यौरा पेश किया है, लेकिन हमें एक उम्मीद भी नजर आ रही है। मैं सही दिशा में प्रगति के मामले भी देख रहा हूं, जिनसे ये झलकता है कि क्या किया जा सकता है। बहुत से शहर अब हरित बन रहे हैं। सर्कुलर अर्थव्यवस्था संसाधनों की बर्बादी को कम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के कम से कम 155 सदस्य देशों ने कानूनी रूप से ये मान्यता दी है कि एक स्वस्थ पर्यावरण एक बुनियादी मानवाधिकार है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि इस मोर्चे पर उत्साहजनक संकेत नजर आ रहे हैं, जिनमें ब्रिटेन, जापान, चीन सहित अनेक विकसित देशों ने अगले कुछ वर्षों के दौरान ये लक्ष्य हासिल करने के प्रति संकल्प व्यक्त किए हैं। ठोस वैश्विक कार्रवाई ये होगी कि विश्व अर्थव्यवस्था को हरित बटन के जरिए बदला जाए और ऐसी टिकाऊ प्रणाली बनाई जाए जो नवीकरणीय ऊर्जा, हरित रोजगारों और एक सहनशील भविष्य से संचालित हो। ये लक्ष्य हासिल करने का एक तरीका शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति हासिल करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक ने कहा है कि कोविड-19 महामारी अभी बहुत लंबी अवधि तक जारी रहेगी और आने वाले दिनों में नेतृत्वकर्ताओं और नागरिकों द्वारा लिए गए निर्णयों से ही ये निर्धारित होगा कि निकट अवधि में वायरस का क्या प्रभाव रहता है और अंततः ये महामारी कब खत्म होगी। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडेनोम गेब्रेसस ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि अब जबकि कोविड-19 की वैक्सीनों को मंजूरी मिलना शुरू हो गया है, तो ये बहुत अहम है कि इन वैक्सीनों का वितरण दुनिया भर में न्यायसंगत तरीके से किया जाए। WHO, यूनिसेफ, विश्व बैंक, वैश्विक कोष और गावी ने 100-100 पहल के तहत 100 देशों का कोविड-19 की वैक्सीनों और अन्य उपकरणों की तैयारी के लिए 100 दिनों के भीतर आकलन करने का बीड़ा उठाया है। महानिदेशक ने कहा कि ये बहुत अहम है कि नेतृत्वकर्ता अपने देशों के नागरिकों को संदेश सही तरीके से पहुंचाएं कि टीकाकरण कितना जरूरी है और ये कब और कहां हासिल किया जा सकता है। महानिदेशक ने एक WHO युवा परिषद के गठन की घोषणा भी की है, जो युवाओं को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य और विकास मुद्दों पर सलाह मशवरा देगी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में दुनिया भर में स्वास्थ्य महामारी COVID-19 के कारण हुई तबाही, उसका मुकाबला करने के सर्वश्रेष्ठ उपायों पर गौर करने और आगे बढ़ने का रास्ता निकालने के उपायों पर विचार किया है। महासभा अध्यक्ष वोल्कान बोस्किर ने गुरुवार को दो दिन के इस विशेष सत्र की शुरुआत करते हुए कहा कि सत्र में हालात का जायजा लिया गया, जिसकी खासी जरूरत थी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने मौजूद गंभीरतम चुनौती का सामना करने के लिए प्रदर्शनीय कार्रवाई करने के प्रयासों में नेतृत्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ नजरें टिकी हुई हैं। ये संकट हमें इस बारे में सोचने के लिए झकझोर रहा है कि चीजें किस तरह की जाती हैं और संगठन के साहसिक बनने व इसमें भरोसा व विश्वास बहाल करने के लिए ठोस उपाय किए जाएं। संयुक्त राष्ट्र ने समाजों में विकलांग व्यक्तियों के और ज्यादा समावेशन और उनके मानवाधिकारों को पहचान देने के साथ साथ उनका सम्मान किए जाने का आह्वान किया है। गुरुवार को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर यह आह्वान किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने एक संदेश में कहा है कि ये अधिकार जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित है। स्कूली शिक्षा हासिल करने का अधिकार, अपने समुदायों में रहने का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल हासिल करने का अधिकार, पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक गतिविधियों में शिरकत करने का अधिकार, खेलकूद में शिरकत करने और आनंद लेने का अधिकार और शिष्ट व सम्मानजनक कामकाज करने का अधिकार। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में जिंदगियों में उथल पुथल मचा दी है और पहले से ही मौजूद असमानताएं और ज्यादा गहरी कर दी हैं। विकलांग लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में शामिल हैं। उनके बहुत ज्यादा गरीबी में जीवन जीने और हिंसा, उपेक्षा व दुर्व्यवहार का ज्यादा सामना करने की संभावना है। UN प्रमुख ने आग्रह करते हुए कहा कि अब जबकि दुनिया कोरोना वायरस से उबरने के प्रयासों में लगी है, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि विकलांग व्यक्तियों की अपेक्षाओं व अधिकारों का ख्याल रखा जाए और COVID-19 के बाद की दुनिया को ज्यादा समावेशी, सर्वसुलभ और टिकाऊ बनाया जाए। उन्होंने कहा, यह लक्ष्य विकलांग व्यक्तियों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के साथ सार्थक बातचीत करके ही हासिल किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी विश्व नेताओं का आह्वान किया है कि विकलांग व्यक्तियों को COVID-19 से उबरने के प्रयासों, योजनाओं और कार्यों में पूरी तरह से शामिल किया जाए। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर विशेष रिपोर्टर गेराड को इनका कहना है कि समान व न्यायसंगत, टिकाऊ और सहनशील समाजों की स्थापना का लक्ष्य केवल मानवाधिकारों पर आधारित रुख अपनाकर ही हासिल किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने COVID-19 महामारी का सामना करने और उसका असर कम करने के लिए उठाए गए कदमों का विकलांगता वाले बच्चों और युवाओं पर होने वाले असर की तरफ ध्यान दिलाया है, जिनमें स्कूलों का बंद होना भी शामिल है। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजूले ने कहा है कि अक्सर ये लोग ही अपनी शिक्षा में आए व्यवधान से सबसे ज्यादा प्रभावित होने के जोखिम का सामना करते हैं। उन्होंने आगाह करने के अंदाज में कहा कि दूरस्थ शिक्षा मुहैया कराने के बहुत से तरीके और उपाय विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट जरूरतों पर खरा नहीं उतरते। यूनेस्को महानिदेशक ने कहा कि ये बहुत अहम है कि ऐसे समाधान तलाश करने की प्रक्रिया में विकलांग व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए, जो हर एक इंसान को ध्यान में रखें और जिनमें अनुभवों से सबक सीखा जाए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवाओं में खामियों के कारण मलेरिया पर काबू पाने के प्रयासों में नकारात्मक असर पड़ रहा है और कोरोना वायरस महामारी मलेरिया बीमारी पर काबू पाने के प्रयासों को और ज्यादा धक्का पहुंचा सकती है। सोमवार को जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका के उच्च दबाव वाले देशों में खासतौर से स्थिति चिंताजनक है। UN स्वास्थ्य एजेंसी ने देशों में स्वास्थ्य साझीदारों से मलेरिया के खिलाफ जद्दोजहद में प्रयास तेज करने का आग्रह किया है और इसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, नए उपकरण व और ज्यादा धन निवेश शामिल हों। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडिनम गेब्रेसस ने कहा कि पूरे अफ्रीका क्षेत्र और दुनिया भर के नेतृत्वकर्ताओं के लिए अब बिल्कुल सही समय है कि वो मलेरिया की चुनौती का सामना करने के लिए एक बार फिर कमर कस लें, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि 21वीं सदी शुरू होने के समय से अब तक हासिल की गई प्रगति की बुनियाद डाली गई थी। उन्होंने कहा कि संयुक्त कार्रवाई और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ देने के संकल्प के साथ हम मलेरिया से मुक्त दुनिया का अपना साझा सपना पूरा कर सकते हैं। मलेरिया वैसे तो एक ऐसी बीमारी है जिसे होने से पहले ही रोका जा सकता है और ये बीमारी होने के बाद भी इसका इलाज संभव है, मगर फिर भी हर वर्ष दुनिया भर में मलेरिया के कारण लाखों लोगों की मौत हो जाती है। मलेरिया बीमारी दरअसल मादा मच्छर के काटने से फैलने वाले संक्रमण के कारण होती है और मच्छरों से बचाने वाली मच्छरदानी का इस्तेमाल करने और घरों के अंदर ऐसे सुरक्षित रसायनों का छिड़काव करके भी मलेरिया के फैलाव को रोकने में मदद की जा सकती है जिनसे मच्छर दूर भागते हों। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने स्लेवरी यानी दासता के समकालीन रूपों के प्रभावों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि इस तरह के घिनौने चलन के लिए 21वीं सदी में कोई जगह नहीं हो सकती। महासचिव ने दासता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर यह बात कही जो कि हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यूएन प्रमुख ने इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने संदेश में कहा है कि व्यवस्थित नस्लवाद के खिलाफ इस वर्ष हुए वैश्विक प्रदर्शनों ने दुनिया भर में अन्यायों की विरासत की तरफ फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है। ध्यान रहे कि इन अन्यायों की जड़ उपनिवेशवाद और दास्ता के काले इतिहास में जमी हुई है, लेकिन दास्ता केवल इतिहास का एक मामला भर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 4 करोड़ लोग अब भी समकालीन दास्ता का शिकार है, जिनमें करीब 2.5 करोड़ लोग जबरन मजदूरी में फंसे हुए हैं और लगभग 1.5 लाख लोग जबरन विवाह के पीड़ित हैं। 4 में 1 पीड़ित बच्चे हैं और कुल पीड़ितों में लगभग 71% महिलाएं और लड़कियां हैं। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि निर्धन व हाशिए पर रहने वाले समूह, विशेष रूप में नस्लीय व जातीय अल्पसंख्यक, आदिवासी लोग व प्रवासी, दास्ता के समकालीन रूपों से विषमतापूर्वक रूप में प्रभावित है। लैंगिक असमानता के कारण भेदभाव के चलन को और ज्यादा बल मिलता है। दास्ता दरअसल पीढ़ियों से चली आ रही गुलामी, जबरन मजदूरी, बाल मजदूरी, घरेलू गुलामी, जबरन विवाह, कर्ज दासत्व, शोषण के लिए इंसानों की तस्करी जिसमें यौन शोषण भी शामिल है, और सशस्त्र संघर्षों में इस्तेमाल के लिए बच्चों की जबरन भर्ती जैसे रूपों से अपनी जड़ें निकालती है। यूएन महासचिव ने समाज के तमाम वर्गों से तमाम घिनौने चलन रोकने के लिए उनके सामूहिक प्रयास और ज्यादा मजबूत करने का आग्रह किया है।
संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 5 दिसंबर को यूएन वॉलंटियर्स डे यानी स्वैच्छिक कार्यकर्ता दिवस मनाता है, जिसके जरिए दुनिया भर के उन स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के योगदान को पहचान दी जाती है जो इस विश्व संगठन के काम में किसी भी तरह की मदद करते हैं। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के प्रयासों में भी यूएन वॉलंटियर्स ने असाधारण काम किया है और बहुत से तो अग्रिम मोर्चों पर भी अपना योगदान करने में नहीं हिचके। संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में वॉलंटियर्स के योगदान की अहमियत के बारे में यूएन न्यूज़ हिंदी के अंशु शर्मा ने यूएन वॉलंटियर्स के भारत में संयोजक अरुण सहदेव के साथ बातचीत की। सुनिए ये इंटरव्यू।
अरुण जी, इस बार कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस ज्यादा खास हो जाता है, क्या थीम है इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का?
टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग, ये है हमारा थीम 2020 आईवीडी का, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोविड के दौरान जो वॉलंटियर्स मिलकर काम किए हैं और समुदाय और वॉलंटियर साथ में जब कोई काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल ऐसा नहीं है जिससे हम पार नहीं पा सकते, इसी को ध्यान में रखते हुए टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग को थीम रखा गया है।
तो कोविड-19 के इस दौर में यूएनवी के स्वयं सेवकों ने इससे निपटने में किस तरह अहम भूमिका निभाई है?
मैं 2 चीज मैं बताना चाहूंगा। एक तो विश्व स्तर पर जैसे ही कोविड की महामारी शुरू हुई तो यूएन वॉलंटियर्स ने बाकी सभी यूएन एजेंसी के साथ मिलकर उनको सपोर्ट करने के लिए यूएनवी की तरफ से काफी स्वयं सेवकों को डिप्लॉय किया। उसमें मेनली जो थे वो हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, और उनका जो मुख्य कार्य था वो कोऑर्डिनेशन था, जिसमें कि हेल्थ का कोऑर्डिनेशन और जो एसेंशियल सप्लाईज का सब को जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके तक पहुंचाने के लिए जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो यूएन के ऑफिसेस में वॉलंटियर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ। हमारा जो भारत सरकार के साथ जो कार्यक्रम है नेहरू युवा केंद्र संगठन, जिसमें 58 जिलों में यूएनवी के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, उन लोगों ने काफी मदद की। उसमें सबसे जरूरी था जानकारी प्रदान करना, लोगों को जागृत करना और लोगों को जो एसेंशियल सप्लाईज वगैरह हैं उनको पहुंचाना।
कोविड से लड़ाई के दौरान क्या कुछ सबक भी मिले जिन्हें भविष्य में बेहतर तरीके से कार्रवाई के लिए अमल में लाया जाएगा?
तो दो तीन चीज जो सीखने का मौका मिला है स्वयं सेवकों को, उसमें एक तो है कि व्यवहार में बदलाव कैसे लाएं, क्योंकि व्यवहार बदलाव लाना एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। समुदाय को अचानक नए तरीके से जीने के लिए कहना और उनको नई नई बंदिशों में रहना इतना जल्दी संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम कम्युनिटी को पहले से मानसिक तौर पर तैयार करें। और एक बहुत लर्निंग हुई है कि आगे आने वाले समय में भी जब कोई इस तरह की विपदा या महामारी आती है तो समुदाय को बहुत जल्दी कैसे जोड़ सकते हैं और उनको कैसे उनके व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि सबके व्यवहार में बदलाव लाने से ही हम इसमें सफल हुए हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी लर्निंग है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का है, जो हम लोगों ने देखा कि जब महामारी शुरू हुई और जो जानकारी थी वो बहुत सोर्सेस से आ रहे थे, तो जो लोग गांव में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, उनके तक ये जानकारी और सही जानकारी कैसे पहुंचे, तो उसमें जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो काफी मददगार साबित हुई है। जो मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग जुड़े हैं गांव-गांव तक, चाहे वो ग्राम पंचायत के माध्यम से है या जो गांव में लोग रहते हैं उनका अपना जो नेटवर्क है, यूथ क्लब्स का, महिला मंडल्स का, वो काफी योगदान रहा कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे उस संवाद को ले जाया जाए।
तो हर साल की तरह इस बार भी वी अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, तो इस साल किन लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं और किन कार्यों के लिए? क्या पिछले साल से कुछ अलग है जो सारी स्थिति जिस तरह से सामने आई है कोविड की, तो उस हिसाब से क्या किसी तरह ये अवार्ड्स पिछली बार से कुछ अलग है?
जरूर ये देखा गया कि इस दौरान हेल्थ और वेलनेस से संबंधित ज्यादा काम हुआ है, लेकिन जो वॉलंटियर्स हमने हमारे पास 10 जो फाइनली चुन कर आए हैं उनमें है जो हेल्थ सेक्टर से में है उनका कंट्रीब्यूशन काफी है, शिक्षा में है और जेंडर महिला सशक्तिकरण में है, वाटर और सैनिटेशन के क्षेत्र में है और इंक्लूजन के क्षेत्र में है कि कैसे हम समाज को एक एकजुट रख सकते हैं, बांध सकते हैं। तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है जो पहले भी काम होता रहा है।
तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के लिए इस बार यूएनवी का संदेश क्या है, किस तरह स्वयंसेवक को हम अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं?
दो बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कोविड का खतरा तो है ही, उसके साथ जो क्लाइमेट इमरजेंसी की बात हो रही है और जिसके प्रभाव हम लोग देख रहे हैं भारत में भी, अभी आप इस वर्ष ही हम लोगों ने देखा है कि बार बार साइक्लोन आ रहा है और बाढ़ की स्थिति भी पैदा हुई है, तो उसमें क्लाइमेट से या तो ड्राउट की सिचुएशन होगी या फ्लड की सिचुएशन होगी और ज्यादा और बड़े तूफान आएंगे, उसमें हमेशा से स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो क्लाइमेट इमरजेंसी का एक ऐसा एरिया है जिसमें मुझे लगता है कि आने वाला समय में स्वयंसेवकों को कार्य करना चाहिए।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने सुरक्षा परिषद और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्धग्रस्त देश यमन में मानवाधिकार उल्लंघन के अतार्किक और निर्बाध मामलों पर यह कहते हुए रोक लगाने का आह्वान किया है कि अत्याचारों ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। यमन पर प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के यूएन समूह के अध्यक्ष कामिल जैनदोबी ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद के एक बंद सत्र में बताया कि यमन में आम लोग भुखमरी से पीड़ित नहीं हैं, बल्कि उन्हें संघर्ष के पक्षों द्वारा भुखमरी में धकेला जा रहा है। अरब क्षेत्र का सबसे बदहाल देश यमन वर्ष 2015 में उस समय संघर्ष में घिरने लगा था जब देश में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार और हूथी विद्रोहियों के बीच लड़ाई भड़क उठी थी। यमन सरकार को सऊदी अरब के समर्थन वाले गठबंधन का समर्थन हासिल रहा है। हूथी विद्रोहियों को अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। यूएन मानवीय सहायता एजेंसी OCHA द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों से मालूम होता है कि यमन में इस युद्ध के कारण लगभग 2,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बड़ी संख्या यानी करीब 1,31,000 ऐसे लोगों की है जिनकी मौत भोजन, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं का अभाव होने के कारण हुई है। यूएन विशेषज्ञों ने सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के राजदूतों को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन हो रहा है, जिनमें मोर्टार हमले, बारूदी विस्फोटकों का इस्तेमाल, बच्चों को लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए भर्ती किया जाना, प्रताड़ना का सहारा लेना जिसमें बंदी बनाए रखे जाने की अवधि में यौन हिंसा भी शामिल है। यूएन समूह ने इस पृष्ठभूमि में सुरक्षा परिषद से इन उल्लंघन के जिम्मेदार लोगों व पक्षों में दंड मुक्ति का माहौल खत्म करने, प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाने और इस स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को भेजने की पुकार लगाई है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।